अध्याय 15 क्रिया परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में कुछ कथन करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द का अर्थ है काम। वाक्य में जिस शब्द से किसी का काम होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, रश्मि गाती है, ऋतु की लेखनी टूट गई, अंशा खेलेगी, तनु और तनय दौड़ रहे हैं। यहाँ गाती है, टूट गई, खेलेगी, दौड़ रहे हैं से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है। अतः ये शब्द क्रिया है। क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप में विशेष परिवर्तन भी हुआ करते हैं। खाना, पीना, दौड़ना, रोना, हंसना इत्यादि ऐसे क्रिया शब्द हैं जिनके अंत में ना हो क्रिया के समान रूप कहलाते हैं। क्रिया में सामान्य रूप से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान नहीं कर सकते। इन शब्दों से ना हटा देने से जो मूल शब्द बचा रहता है उसे धातु कहते हैं। धातु परिभाषा। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। उदाहरण के लिए, खा से खाना, चल से चलना, भाग से भागना, पी से पीना, रो से रोना, खेल से खेलना। उदाहरण के अंतर्गत दिए गए शब्दों में खा, पी, चल, रो, भाग और खेल धातु है। प्रत्येक शब्द जिसके अंत में ना पाया जाए क्रिया नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, कोना, सोना, गन्ना इत्यादि संज्ञा शब्द है क्योंकि ये किसी वस्तु के नाम है। इनसे किसी कार्य का करना अथवा होना नहीं पाया जाता है। क्रिया के भेद। मुख्यतः क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से चलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक शब्द से सहित अर्थ का बोधक है। अतः सकर्मक क्रिया वह है जिसका कर्म हो। उदाहरण के लिए, मंजुला गाना गा रही है। यहाँ गा रही है क्रिया के व्यापार का फल गाना पे पड़ रहा है। अतः गा रही है क्रिया सकर्मक है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक शब्द में अ बिना अर्थ का बोधक है। अतः अकर्मक क्रिया वह है जिसका कर्म ना हो। उदाहरण के लिए, रितु घर गई। इस वाक्य में गई क्रिया का कर्ता ऋतु है। घर जाने का फल ऋतु पर ही पड़ता है इसलिए गई शब्द अकर्मक क्रिया है। कुछ अकर्मक क्रियाएं रूपांतरण के द्वारा सकर्मक हो जाती हैं। जिस क्रिया का कर्म वर्तमान है वह है सकर्मक है और जिसका कोई कर्म नहीं है वह है अकर्मक है। उदाहरण के लिए, वह खाना खा रहा है। इस वाक्य में खा रहा है सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका कर्म विद्यमान है। प्रश्न, वह क्या गा रहा है? उत्तर, गाना। दूसरा वाक्य देखें, आग जल रही है। यहाँ पर जल रही है अकर्मक क्रिया है क्योंकि इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। आग स्वयं जल रही है। इस प्रकार वाक्य में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं प्रश्न द्वारा भली भांति जानी जा सकती हैं, क्या अथवा किसको अथवा कहाँ के साथ प्रश्न करने से क्रिया का कर्म ज्ञात हो जाता है। क्रिया में कौन अथवा क्या लगाकर प्रश्न करने से प्राय कर्ता ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए शांतनु उछल रहा है, प्रश्न कौन उछल रहा है, उत्तर शांतनु। यहाँ उत्तर में शांतनु शब्द आया, किंतु यह शब्द कर्ता है, कर्म नहीं। यदि क्रिया में कौन लगाने पर उत्तर नहीं मिलता तो क्या लगाना चाहिए? क्या शब्द कर्ता और कर्म दोनों का बोध कराते हैं? कर्ता क्या, किस चीज ने, क्या चीज ने, कौन। कर्म क्या, किस चीज को, किसको। ऐसी स्थिति में यदि क्या के स्थान पर किस चीज को अथवा किसको आदि के साथ प्रश्न किया जाए तो अति उत्तम होगा। दि कर्म क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें दि कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कहना, सुनना, देना, बताना इत्यादि। इन्हीं अर्थों की अन्य क्रियाएं दि कर्मक हैं। उदाहरण के लिए मौलवी साहब लोगों को कुरान शरीफ का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के दो कर्म हैं, लोगों को कुरान शरीफ का पाठ। इन दि कर्मक क्रियाओं के कर्मों के दो भेद हैं, एक को प्रधान कर्म कहते हैं और दूसरे को गौण कर्म। प्रधान कर्म, जिस कर्म का झुकाव दि कर्मक क्रिया के साथ प्रधान रूप से होता है उसे प्रधान कर्म कहते हैं। प्रधान कर्म क्रिया का मुख्य कर्म है। यदि इस मुख्य कर्म को वाक्य से हटा दिया जाए तो दि कर्मक क्रिया अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए मनंजय ने मयंक को एक कविता सुनाई। इस वाक्य में कविता शब्द सुनाई क्रिया का प्रधान कर्म है। अब सुनाई क्रिया के साथ यह प्रश्न हो सकता है, प्रश्न क्या सुनाई, उत्तर कविता। इस प्रकार प्रधान कर्म कविता हुआ। गौण कर्म, जिस कर्म का झुकाव द्विकर्मक क्रिया के साथ गौण रूप में होता है उसे गौण कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए सेतु ने श्वेता की नीति की बात बताई, प्रश्न किसको बताई, उत्तर श्वेता को। यहाँ श्वेता को शब्द भी बताई, क्रिया का एक कर्म हुआ। प्रयोग के अनुसार बहुत सी सकर्मक क्रिया अकर्मक हो जाती है। उदाहरण के लिए सकर्मक, मैं अपना सिर खुजला रहा हूँ, अकर्मक, मेरा सिर खुजला रहा है। प्रथम वाक्य में खुजला रहा हूँ क्रिया का कर्म सिर है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। द्वितीय वाक्य में खुजला रहा है सामान्यतः कहा गया है, इसका कोई कर्म नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। कभी कभी अकर्मक क्रियाएं जिन धातुओं से बनी होती हैं उन्हीं से निकले हुए अथवा मिलते जुलते कर्म रखती है, ऐसे कर्म को सजातीय कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए वे एक तेज दौड़ रहे हैं, देखो वर्तिका मेरे साथ कैसी चाल चल रही है। इन वाक्यों में दौड़े और चल रही हैं क्रियाओं के सजातीय कर्म क्रमशः दौड़ और चाल शब्द है, क्योंकि ये दौड़ और चल धातुओं से निर्मित है। क्रियाओं के रूपांतरण, जिस प्रकार अन्य विकारी शब्दों के रूपों में यथा स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रिया शब्द भी समयानुसार काल, रीति, पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार रूपांतरित होते हैं। परंतु ये रूपांतरण मुख्य क्रिया ही में होते हैं। क्रिया का मूल धातु ही उसका सबसे छोटा रूप है। जाना क्रिया का मूल धातु जा है। इस धातु का इससे और छोटा रूप नहीं हो सकता। जा धातु का प्रचलित रूप जाना है। इस जाना क्रिया के रूप में ही अन्य परिवर्तन यथा स्थान होते हैं। उदाहरण के लिए जा धातु जाती, जाता, जाता हूँ, जाती है, जाऊंगा इत्यादि है। पूरक परिभाषा कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए भी पूरा अर्थ प्रकट नहीं करती। ऐसी स्थिति में वाक्य में क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए दो शब्द जोड़े जाते हैं, उन्हें पूरक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने उसे पत्रकार बनाया। इस वाक्य में मैंने कर्ता और बनाया क्रिया के होते हुए भी वाक्य पूरा नहीं है। उसे पूर्ण करने के लिए पत्रकार शब्द जोड़ना पड़ा है, अतः पत्रकार शब्द पूरक है। उत्पत्तिगत क्रिया भेद। उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के तीन प्रकार की होती है, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया, जो क्रिया दूसरे शब्दों से ना बनी हो उसे मूल क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आना, जाना, खाना, पीना इत्यादि। यौगिक क्रिया, जो क्रिया अन्य शब्दों अथवा प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आ जाना, चला जाना, खा लेना, सिखाना, पढ़ाना, तैराना, यह क्रिया तीन प्रकार से बनी है। क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगाकर खा जाना, गिर पड़ना, इसमें पहली मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया भी है। दूसरा, क्रिया के आगे आ वा प्रत्यय लगाकर चलना, चलाना, तैरना, तैराना, लिखना, लिखवाना, इसे संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तीसरा, संज्ञा अथवा विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगाकर धिक्कार, धिक्कारना, पुचकार, पुचकारना, खरीद, खरीदना है। इसे नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। तीसरा, पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पूर्व पाया जाए और जिसमें लिंग, वचन, पुरुष का प्रयोग ना हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़कर, जाकर, खाकर इत्यादि। क्रिया की अवस्था। प्रत्येक काल में क्रिया की तीन अवस्थाएं हैं। पहला, सामान्य अवस्था, दूसरा, विधि अवस्था, तीसरा, संभाव्य अवस्था। सामान्य अवस्था, जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध और किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो उसे सामान्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कनिका आई है, कर्णिका खेल रही है। यहाँ आई और खेल रही है क्रिया से आने और खेलने का विधान निश्चय होता है, अतः यहाँ क्रिया की सामान्य अवस्था है। दूसरा, विधि अवस्था, जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो उसे विधि अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी घर जाओ, क्या मैं आपसे कुछ जान सकता हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यह अवस्था दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि से आना, प्रार्थना, प्रश्न आदि का वर्तमान काल में कार्यावंत होना ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए अभी घर जाओ, हम यहाँ रुक सकते हैं। परवरदिगार क्षमा करो। परोक्ष विधि, इस विधि से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भविष्यतः काल में क्रियावंत होना ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए, तुम कल घर जाना, तुम मैदान में उतरोगे, आप मुझे एक पत्रिका दीजिए। तीसरा, संभाव्य अवस्था, जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है, उसे संभाव्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, कदाचित मेरा कार्य हो जाए, संभवतः वह 2 दिन में आ जाए, तुम कल आओगे या नहीं। काल, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। भेद, मुख्यतः काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यतः काल। भूतकाल, इस काल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का समाप्त हो चुका है। इसके 6 प्रकार हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा संदिग्ध भूतकाल, पांचवा अपूर्ण भूतकाल, छठवा हेतुमद भूतकाल। उदाहरण के लिए, अंकित आया, अंशा गई। ऊपर के आया और गई क्रिया से यह ज्ञात नहीं होता कि अंकित किस समय अथवा अंशा किस समय गई। आसन भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया का कार्य अभी समाप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, हमने चित्र देखा है, इसे देखा क्रिया के सही ध्वनि निकलती है, अभी देखना है। पूर्ण भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो चुका किंतु कार्य को समाप्त हुए अधिक समय हो चुका है। उदाहरण के लिए, मैंने नाटक लिखे थे, यहाँ नाटक लिखने का कार्य समाप्त हो गया किंतु समाप्त हुए अधिक समय हो चुका है। चौथा संभाव्य भूतकाल, इससे क्रिया के कार्य की समाप्ति में कुछ संदेह का बोध होता है। उदाहरण के लिए, उसने कहानी लिखी होगी, यहाँ लिखी होगी क्रिया से उसके लेखन के प्रति संदेह प्रकट होता है। पांचवा अपूर्ण भूतकाल, इससे यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, पर यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, वह गा रही थी, तृप्ति पर रही थी। प्रथम वाक्य में गा रही थी से यह नहीं ज्ञात होता कि गाने का कार्य कब समाप्त हुआ। इससे यही ज्ञात होता है कि गाने का कार्य उस समय हो रहा था। छठवां हेतु हेमद भूतकाल, इससे में यह ज्ञात होता है कि कार्य का समाप्त होना भूतकाल में संभव था किंतु किसी कारणवश न हो सका। उदाहरण के लिए, यदि वह सतर्क रहता तो दुर्घटना नहीं होती। यहाँ सतर्क रहता भूतकाल में संभव था, पर ना जाने किस कारण से नहीं हो पाया। दूसरा वर्तमान काल, क्रिया का कार्य अभी हो रहा है, इसका बोध वर्तमान काल से होता है। इंसान पढ़ता है, कात्यायन पढ़ रहा है, कौटिल्य पढ़ चुका है, उर्वशी पढ़ रही है, ऋतु पढ़ चुकी है। ऊपर के वाक्यों की क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि इनके काल में कुछ सूक्ष्म अंतर है। इसके अनुसार वर्तमान काल में चार भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा असंभाव्य वर्तमान, तीसरा अपूर्ण वर्तमान, चौथा हेतु हेमद वर्तमान। पहला सामान्य वर्तमान, यह क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के व्यापार का होना वर्तमान काल में समान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए, वह विश्वविद्यालय में पढ़ती है, कर्णिका विश्वविद्यालय में पढ़ती है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान, यह क्रिया में का वह रूप है जिससे क्रिया का आरंभ होना ज्ञात होता है किंतु क्रिया का समाप्त होना अज्ञात रहता है। उदाहरण के लिए, कनाद गा रहा है, स्मृति गा रही है। तीसरा संभाव्य वर्तमान, इससे वर्तमान काल में क्रिया होने की विशेष संभावना का बोध होता है। उदाहरण के लिए, चैतन्य पढ़ता होगा, मिति पढ़ती होगी। यदि वह मुझे जानता हो तो उसे यहाँ आने दो। चौथा हेतु हेतु मद वर्तमान, यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेमद वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह आ गया तो उसे खिलाओ, यहाँ खिलाओ वर्तमान काल की क्रिया आ गया हो पर निर्भर है, अतः खिलाओ हेतु हेमद वर्तमान काल की क्रिया है। तीसरा भविष्यतः काल, इस काल में यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार सामान्य रीति से भविष्य में होगा। इस काल के तीन प्रकार हैं, समान भविष्यतः, संभाव्य भविष्यतः, हेतु हेमद भविष्यतः। पहला जाह्नवी खेलेगी, दूसरा परमा गाएगी। संभाव्य भविष्यतः काल, इससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाती है। उदाहरण के लिए, वह चले तू जाए। हेतु हेतु मद भविष्यतः काल, इस काल में भविष्यतः काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, वह आए तो मैं जाऊं, वह गाए तो मैं नाचूं आदि। अर्थ परिभाषा, क्रिया द्वारा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष के विषय में कथन करने का पृथक पृथक ढंग होता है। इन तरीकों से व्यक्ति के कथन के अनेक भाव अथवा अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। भेद, अर्थ चार प्रकार के होते हैं। पहला निश्चय, दूसरा आज्ञा, तीसरा संभावना तथा संदेह, चौथा कार्य कारण संबंध। पहला निश्चय, आंधी उठ रही है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें अपना अध्ययन करना चाहिए, भाग्य पर नहीं कर्म पर भरोसा रखो। दूसरा आज्ञा, आप वहाँ शीघ्र जाइए, जितना आपसे कहा जाए उतना ही कीजिए, इस घर से तुरंत निकलिए। संभावना तथा संदेह, वह आगरा में होगा, कदाचित वह यहीं आए, इति आती होगी। चौथा कार्यकरण संबंध, यदि परिश्रम करते तो सफल होते, यदि वर्षा होती तो दुर्भिक्ष ना पड़ता। निश्चय के अर्थ में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भविष्यत है। आज्ञा के अर्थ में विधि, प्रत्यक्ष विधि और परोक्ष विधि। तीसरा संभावना तथा संदेह के अर्थ में। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भूत, संभाव्य भविष्यत है। चौथा, कार्यकरण संबंध के अर्थ में। हेतु हे मद वर्तमान, हेतु हे मद भूत, हेतु हे मद भविष्यत है। वाच्य परिभाषा, जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में विधान किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मीता ने पत्र लिखा, मीता द्वारा पत्र लिखा गया। दूसरा, मैंने फुटबॉल मैच देखा, मेरे द्वारा फुटबॉल मैच देखा गया। इन उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा कभी कर्ता के विषय में विधान किया गया है और कभी कर्म के विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भेद, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्तव्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। पहला कर्तव्यवाच क्रिया के रूप में कर्ता के विषय में विधान किया जाता है, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। ऐसी स्थिति में वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता रहता है। उदाहरण के लिए, जया परीक्षा की तैयारी कर रही है, विभु गाना गाता है। दूसरा कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्म के विषय में विधान किया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ऐसी स्थिति में वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता रहता है। उदाहरण के लिए, जया द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है, विभु द्वारा गाना गाया जाता है। तीसरा भाववाच्य, जब वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग क्रमवाच्य की भांति होता है, तब भाववाच्य कहलाता है। ऐसी स्थिति में अकर्मक क्रिया कर्महीन होने से केवल भाव के अर्थ का बोध कराती है। उदाहरण के लिए, गर्मी में उसमें बैठा नहीं जाता, तुमसे कैसा रहा जाएगा। वाच्यांतर, कृतवाच्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन करने से कृतवाच्य का कर्ता कारण कारक में हो जाता है, तथा क्रिया का कर्म कर्ता कारक में। फिर कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल का रूप देते हैं। तदंतर क्रिया के इस रूप में काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया का सम्मिलित कर देते हैं। कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य भी इसी प्रकार बनाता है, परंतु भाववाच्य की क्रिया का सदा अन्य पुरुष और एक वचन में होती है। नीचे दी गई तालिका को समझें। कृतवाच्य से क्रमवाच्य और भाववाच्य का निर्माण। कृतवाच्य क्षमा गजल रचती है, क्रमवाच्य क्षमा द्वारा गजल रची गई है, भाववाच्य क्षमा गजल रचती है। कृतवाच्य मंजुल पर रहा है, क्रमवाच्य मंजुल पर रहा है, भाववाच्य मंजुल से पढ़ा ना जा सका। कृतवाच्य धूती ने शांता को पीटा, क्रमवाच्य धूती द्वारा शांता को पीटा गया, भाववाच्य धूती ने शांता को पीटा। कृतवाच्य रजत दौड़ नहीं सकेगा, क्रमवाच्य रजत दौड़ नहीं सकेगा, भाववाच्य रजत से दौड़ा नहीं जा सकेगा। कृतवाच्य सिन गधा वहां नहीं रही, भाव क्रमवाच्य सिन गधा वहां नहीं रही, भाववाच्य सिन गधा से वहां नहीं रहा गया।